कल हमने संघर्ष का मूल कारण क्या है उसको जाना, तो आज हम देखते हैं इसी संघर्ष का समाधान करना है तो उसकी युक्तियां क्या है वो बताने हमारे पास है दीपा बहन। दीपा बहन ओम शांति।
जैसे आपको कल हमारे डॉक्टर प्रेम मसन भाई ने और मीरा बहन ने बहुत अच्छी बातें समाधान के रूप में सुनाया, तो उन सभी बातों को हम फिर से संक्षिप्त में फिर से आज हम दोहराएंगे। कल हमने जो सुबह के सेशंस देखे उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्यों आपस में वाद विवाद होता है, चाहे स्वयं के आंतरिक मन में कॉन्फ्लिक्ट होता है या बाह्य रूप से संबंधों में होता है, दोनों ही बातों के कारण हमने देखे। और शाम को जब आपने डॉक्टर प्रेम मसन भाई को भी सुना और हमारी आदरणीय मीरा बहन को भी सुना, तो उसमें कई प्रकार के समाधान और कई प्रकार की छोटी छोटी युक्तियां आपको जरूर प्राप्त हुई होगी। उनमें से कौन सी युक्तियां आपको याद है? प्रेम मसन भाई और मीरा बहन ने हमको समाधान के लिए बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी बातें सुनाई, युक्तियां सुनाई। तो कौन कौन सी युक्तियां सुनाई? हाँ, डॉक्टर प्रेम मसन भाई ने सुनाया कि कोई भी बात को आप फील नहीं करो, उस बात को मन में रखो नहीं, लेट गो करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई बात हो भी गई तो उसको क्षमा भाव से उसको भूल जाओ, क्षमा कर लो और फुल स्टॉप। जैसे आपको कल का लेसन भी था कि आत्मा जो है वो भी बिंदु स्वरूप है, आज भी परमात्मा के लेसन में आपने देखा परमात्मा भी वास्तव में बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों का और शक्तियों का सिंधु है, सागर समान है। तो उस रूप में हम देखते हैं ये तीसरा जो पॉइंट है फुल स्टॉप, जो बात हो गई उसको हम फुल स्टॉप दे दें, उससे कोई ना कोई सकारात्मक अनुभव जोड़ दें, कोई प्रकार की समझ जोड़ दें जिससे वो बात बुद्धि में बार बार नकारात्मक भाव से हम याद नहीं करें, फुल स्टॉप कर लें। और स्टॉप सेवन सी और स्टार्ट सेवन सी, कौन सी सेवन सी स्टॉप करनी और कौन सी शुरू करनी? कॉम्पिटिशन सही बात है। अब ये बातों को जैसे हम देखते हैं कि हम नोट करते हैं तो बुद्धि में भी इसको नोट करना है, नहीं क्योंकि समय पर ये याद आनी चाहिए, समय पर जब परिस्थिति आए तब हमको इन युक्तियों का उपयोग होगा। नहीं, कई बार हम देखते हैं कि हमें भी आध्यात्मिक जो हमारे सुबह के प्रवचन होते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, अध्ययन होता है हमारा, तो उसमें भी हमको परमात्मा द्वारा यही शिक्षा मिलती है कि ये जो बातें हैं आप नोटबुक तक ही नहीं रखना, लेकिन मन में इसको बार बार चिंतन करके इसको कैसे मुझे अपनाना है, दैनिक जीवन में भी इसको प्रयोग करना है, इसका एक लक्ष्य रखना है। और कुछ शब्द भी मीरा बहन ने सुनाए, हाँ चार फैक्ट्रीज के बारे में सुनाए, कौन सी चार फैक्ट्रीज? आइस फैक्ट्री, अच्छा लव फैक्ट्री और इंटेस्टाइन में स्ट्रेंथ। तो हम देखते हैं कि ये बातें जो है ये जैसे हम सुनते जा रहे हैं और यहाँ क्योंकि इतना सुंदर साधना का वातावरण है, तपस्या का वातावरण है, परमात्मा का स्वयं ही हमको डायरेक्ट एक पालना मिल रही है, तो उस रूप से ये जैसे हमारे अंदर ये गुण और शक्तियां परमात्मा भर रहा है, जैसे ये श्रृंगार आत्मा का हो रहा है, तो ये गुणों को जो हम सुन रहे हैं जो बातें उसको फिर मनन चिंतन करके उसको एक जीवन शैली के रूप में हमें अपनाना है। और कौन सी बात रह गई? कुछ शब्द बहुत अच्छे सुनाए मीरा बहन ने जी। आई एडमिट, मिस्टेक जो होता है मुझे एडमिट करना है, टीम, वी शब्द याद रखना है, आई नहीं, टीम स्पिरिट हो जी। आई एम सॉरी, कभी अगर गलती हो भी गई तो हम उसको शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, तो तुरंत ही वो आपस में जो है समझौता हो जाता है। थैंक यू, एक छोटा शब्द है लेकिन भूल जाती, वी नॉट आई। तो शब्दों में और साथ में मन में भी, तो मन में भी वी ना हो, आई ना हो, नहीं तो एक ये होता है शब्दों में वी है लेकिन मन में अभी तक आई कॉन्शियसनेस है। तो आज हम फिर से ये बातों को और गहराई से देखेंगे। तो जैसे हमने देखा कि पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन, समाधान के सूत्र क्या हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हार्मनी, जैसे बहुत सुंदर आपको अगर याद हो तो पहले दिन में आपको हमारी दादी जी के ये अनुभव के आधार से सुनाया था कि दादी जी ने बहुत सुंदर कहा कि हार्मनी अर्थात मैंने हार मानी आप जीते, तो हार्मनी हो जाती है। तो उस रूप में ये जो हार्मनी, जो हमें आपसी सद्भावना से समाधान की आवश्यकता है, उसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता जरूर चुनना होगा। क्योंकि जब कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जहां आप जो चाहते हैं वो सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो कह रहा है वो आपको स्वीकार नहीं हो रहा है। जैसे कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, नहीं बॉम्बे में तो ये आम अनुभव है कि कहां भी आपको जाना है, चाहे आप बस में हो, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप कोई भी रूप से हो, तो सारे दिन में ही आजकल ऐसा समय है कि वहां ट्रैफिक में हम फंसते जाते हैं। तो जब ऐसा है कि आपको पहुंचना ही है और ट्रैफिक में फंस चुके हैं, तब फिर आपको और कोई रास्ता ढूंढना होगा, या दूसरी बार आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये रास्ते से मुझे नहीं आना है, तो दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि मंजिल तो एक ही है, आपके जो जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उनकी भी इच्छा तो वही है कि समाधान इसमें लाना है, चाहे वो पारिवारिक कोई समझौता लाना है, चाहे कारोबार में, ऑफिस में आप कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उनका भी लक्ष्य है कि ये काम जल्दी होना है, इससे कंपनी को सफलता प्राप्त होनी है, इससे कंपनी को फायदा होना है। चाहे कोई सामाजिक संस्था है उसमें भी जो आपने लक्ष्य रखा है, तो उसमें विचारों में अंतर आ जाता है, जो विधि आप अपनाना चाहते हैं उसमें अंतर आ जाता है, लेकिन मंजिल तो एक ही है। तो जैसे यहाँ सुंदर रूप से दिखाया है कि डेस्टिनेशन तो सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है, हमें दिशा अलग लेनी होगी। हम चाहेंगे कि हम इस रूप से करें, वो उससे सहमत नहीं है या उसमें हमें समाधान नहीं मिल रहा है इस दिशा में, तो हमें दूसरी कोई दिशा लेनी होगी। तो उस रूप से जैसे कल आपको बहुत अच्छा प्रेम भाई बता रहे थे कि हम साक्षी होकर देखें कि ये जो मैं दिशा प्रयोग करना चाहता हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो मुझे कौन सी और दिशा लेनी है जिसमें उनका भी मुझे सहयोग, उनका भी समाधान मिल जाए, क्योंकि मंजिल एक ही है। वो भी यही चाहते हैं कि ये सफलता हो, तो वो कॉमन मंजिल क्या है उसका चिंतन पहले करना है कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। वो जब डेस्टिनेशन सामने दिखाई देता है, मंजिल में एक मत आ जाती है, तो फिर दूसरी दिशा या दूसरा रास्ता चूज करना सहज हो जाता है, दूसरा डायरेक्शन चूज करना सहज हो जाता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि वो जो रास्ता होगा वो समाधान वहां होगा जहां आपसी विचारों का समन्वय होगा, आइडियाज मीट करेंगे, जो उनके विचार है आपके विचार है उसमें कुछ समानता आ जाएगी, और जहां अंतर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा जरूर होगा जब हम साक्षी भाव से उनकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो हमको जरूर कोई ना कोई ऐसी बात उनकी लगेगी जिसमें हम सहमत हैं, जो हमको हमारे विचारों से भी उस बात का तेलुक है, उस बात में समाधान आ सकता है। तो साक्षी भाव से जब हम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले व्यक्ति जो बोल रहे हैं उसमें से एक कोई बात हमको जरूर लगेगी, हाँ ये ठीक है, ये भी मेरे विचार से सहमत है, ये मेरे विचार से इसका संबंध है। तो वो जहाँ समानता है उसको हम बढ़ाएं और जहाँ अंतर है वो समाप्त करें। तो उसके लिए ये दूसरा रास्ता ढूंढना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए जैसे कल कहा कि थोड़ा सा हमें अपने अहम भाव को छोड़ना होगा। जहाँ अहम भाव आ जाता है वहां ये लगता है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं इसी रास्ते से होना चाहिए, लेकिन वो सफलता अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो अपने विचारों में दूसरे विचारधारा से उसी परिस्थिति को देखना होगा। बाहर रास्ता तब मिलेगा जब अंदर में हम अपनी सोच को बदलेंगे। तो वो जो भी समाधान है बाह्य रूप से, उसको पहले अपने अंदर वो समाधान लाना आवश्यक है। तो उसी परिस्थिति को जब हम साक्षी भाव से देख लेते हैं ना अपने दृष्टिकोण से ना उनके दृष्टिकोण से, साक्षी भाव से वो जैसी परिस्थिति है वैसे उसको देखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें जरूर कोई समानता दिखाई देती है। क्योंकि आप स्वयं अनुभवी हैं कि जब आप कारोबार में होते हैं, चाहे सामाजिक कोई संस्था के कारोबार में आप जुड़े हैं, चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप वर्क करते हैं, चाहे परिवार में भी, तो जब दो लोगों का आपस में कुछ मतभेद होता है और आप अगर उससे बाहर हैं, तीसरे हैं, तो आप साक्षी होकर देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये बात में तो ये समान है, ये तो ठीक है, ये दोनों ये बात को एग्री कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका आपस में इतना मतभेद क्यों हो रहा है? क्योंकि उस बात को वो देख नहीं पा रहे हैं, उस बात को आपस में वो समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। तो साक्षी होकर जो तीसरा व्यक्ति है वो उस समानता को देखना उसके लिए सहज हो जाता है। क्यों? तीसरे व्यक्ति को, आपको ये जरूर अनुभव होगा, जब दो लोगों का आपस में वाद विवाद होता है तो जब आप उससे बाहर हैं, उसके अंदर है तब मुश्किल है, लेकिन बाहर है तो आपको वो समझौता बहुत सहज दिखाई देता है, आप सुनाते भी हैं उनको। क्यों क्यों सहज हो जाता है? क्योंकि उस समय हम डिटैच हो जाते हैं, हमारी भावनाएं, हमारे अपने विचार, हमें हमारी अपनी मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है, जो हमारे अपने अहम भाव से जुड़ी हुई है, वो वहां कार्य नहीं कर रही। हम साक्षी भाव से, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से, एक स्पष्ट दृष्टिकोण से, वर्तमान के दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं, तो इसलिए तुरंत ही हमको उसमें कोई आपस में समानता दिखाई देती। लेकिन जब हम उस वाद विवाद में खुद हैं तो क्या होता है, हम अपने अनुभव के आधार से, जैसे कल भी देखा कि अनुभव, संस्कार और साथ में मान्यताएं, इन तीनों में तो अंतर होगा ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अलग अलग अनुभव, अलग अलग संस्कार और मान्यताएं हैं। तो उसको हम अहम भाव से, अपनी ही मान्यताओं को ही सही समझकर, उस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, तो वो दृष्टिकोण के आधार से हमें उस परिस्थिति में समाधान नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये साक्षी भाव होता है तब ये पॉइंट जो है, समाधान का बिंदु देखना बहुत सहज हो जाता है, जब हम अपने आप को वो तीसरे व्यक्ति के पोजिशन में ले जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि समाधान जो है वो सहज हो, सरल हो और लंबे समय तक चले, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। ज्यादा करके हम देखते हैं, कई बार समाधान तो हम कर लेते हैं लेकिन अंदर फील होता है ये मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, मुझे करना पड़ा, उसमें वो खुशी नहीं है, उसमें हम उस बात को ओन नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं है, कमिटमेंट नहीं महसूस होती है, दबाव से मुझे लगता है मुझे करना पड़ा। तो ये प्रकार का जो समाधान है वो क्या होता है, थोड़े समय के लिए चलता है नहीं, और उसमें खुशी नहीं है, उसमें आत्मीयता नहीं है, इसलिए वो थोड़े समय के बाद फिर से वाद विवाद आ जाता है, फिर से कोई और नई बात के लिए आपस में मतभेद में आ जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है कि कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं करना है, लेकिन एक दूसरे को समझना है, उस परिस्थिति के प्रति नई समझ प्राप्त करनी, उसी परिस्थिति को नए दृष्टिकोण से समझना है, नई समझ उसके प्रति प्राप्त करनी। जैसे ही नई समझ प्राप्त हो जाएगी तो उस परिस्थिति के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ जो शायद वाद विवाद से संबंधित नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण के परिवर्तन से ये परिस्थिति का संबंध है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम कई बार हमारे और प्रोग्राम्स में हम देते हैं कि ये एक स्टीफन कोवी का एक किताब में एक एग्जाम्पल है, जिसमें एक व्यक्ति एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, और ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहा है, उस समय सुबह का समय है, बंबई के ट्रेन से मुझे नहीं लगते क्योंकि सभी शांति से बैठे हैं, अपना कोई पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, कोई माताएं अपना काम कर रही, बुनाई का काम कर रही है, कोई किताब कोई पढ़ रहे हैं। और जैसे ही एक स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है तो एक व्यक्ति और तीन बच्चे उसमें चढ़ते हैं, और जैसे वो तीन बच्चे चढ़ते हैं तो वो उस ट्रेन में कंपार्टमेंट में तूफान मचाना शुरू करते हैं, यहां से वहां भागते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं भाई उनका न्यूज़पेपर खींच रहे हैं, किसी के पैर के ऊपर पैर दे रहे हैं और बहुत आवाज कर रहे हैं। और जरूर है कि सभी पैसेंजर्स के मन में क्या होगा, क्योंकि अब तक तो शांति से बैठे थे तो अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा गुस्सा आ जाएगा और डिस्टर्ब होंगे। तो थोड़ा समय के बाद जब और उनके साथ जो पिता है उनका, जो उनके साथ व्यक्ति आए हैं, जो पिता लग रहे हैं, वो एक कोने पर बैठकर खिड़की के बाहर देख रहे हैं। तो जरूर एक व्यक्ति जो है वो बहुत इरिटेट हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस व्यक्ति के पास गया और कहा कि आप देख नहीं रहे हो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना तूफान मचा रहे हैं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं सबको, आप कुछ बोलते नहीं हैं, आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्ति जो है वो उनको देखने लगा और उनको कहा कि मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं बच्चों को कुछ कह नहीं पा रहा, क्योंकि थोड़े समय पहले ही कल के दिन में ही इन बच्चों की जो मदर है उसका देहांत हुआ है, जो इनको कैंसर था। अभी मैं इन बच्चों को इनके आंटी के पास लेके जा रहा हूँ। मेरे जीवन में इस समय एक ऐसी परिस्थिति है कि मुझे कई निर्णय लेने हैं और मैं स्वयं ही मूंझा हुआ हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अब इस जानकारी के पश्चात सभी पैसेंजर्स का उन बच्चों के प्रति क्या भावनाएं होंगी? सिंपथी। क्यों? परिस्थिति वही थी, नहीं? वो तो वही परिस्थिति थी, बच्चे वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन क्यों ऐसे सभी के विचार क्रोध से सिंपथी के तरफ चले गए? क्यों? सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति को समझा, एक नई जानकारी, छोटी सी बात थी, लेकिन हर एक परिस्थिति स्वयं वो जानकारी हमें देती नहीं है। ऐसी कई परिस्थितियां हमें दैनिक जीवन में हम देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं पड़ता इसका कारण क्या है, और इसलिए हमारी उस परिस्थितियों के प्रति नकारात्मक भावनाएं ही रहती। तो जैसे उस परिस्थिति के प्रति नई समझ मिली कि इसका कारण क्या है, तो हमने कैसे अपने समझ को बदल दिया और अपने विचारों को बदलने की वजह से हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हुआ, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ऐसे ही उसी परिस्थिति को हम नई समझ से देखें। जैसे हमने जो आध्यात्मिक ज्ञान की समझ यहाँ प्राप्त की है, जो गहराई से समझने का एक हमने जैसे अनुभव यहाँ प्राप्त किया है, जो हर एक लेक्चर में आपको ये दिशा दी है कि और गहराई से सोचो, इस दृष्टिकोण से सोचो, तो वो समझ से जब हम उस परिस्थिति को देखते हैं तो हमें आपस में समाधान करना सहज हो जाता है। लेकिन समझ चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं। थोड़े समय के लिए सिर्फ अपने विचारों का दमन नहीं, लेकिन समझ। तो उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को हम नए समझ से देखें। दूसरी बात है कि कंपल्शन नहीं हो कि मुझे करना ही पड़ा, लेकिन कंसिडरेशन हो सामने वाले व्यक्तियों के प्रति, जो व्यक्ति हैं उनके प्रति आत्मीयता हो, उनके प्रति कंपैशन हो, स्नेह हो। स्नेह से जब हम उस व्यक्ति को देखेंगे, उसकी परिस्थिति को देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, तो हमें समझौता लाना या समाधान लाना बहुत सहज महसूस होगा। तो उनके उस संबंध में, जो भी हमारा उनके साथ संबंध है, उस आधार से उनकी जो विशेषताएं हैं या उन्होंने हमें पहले स्वयं क्या सहयोग दिया है, उनके जो कार्य हैं उसको देखकर उनके प्रति जो आत्मीयता या स्नेह को हम जागृत करेंगे, कंसिडरेशन होगा उनके प्रति, तब वो समाधान सहज लगेगा। नहीं तो फिर से लगेगा कि कंपल्शन है, मुझे उसको सॉरी कहना पड़ा, मुझे ये कहना पड़ा कि हाँ मैं गलत हूँ, वास्तव में मैं गलत नहीं हूँ। अंदर फिर भी वो चिंतन चलता रहेगा। लेकिन अगर हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति कंसिडरेट हो जाते हैं, अर्थात आत्मीयता से देखते हैं, स्नेह के भाव से हम उस बात को देखते हैं, तब हम देखते हैं गुणों के, उस व्यक्ति के गुणों के भाव से हम उस व्यक्ति को देखते हैं। थोड़े समय के लिए हम उसके गुणों को अपने सामने जागृत करते हैं या उस व्यक्ति ने हमें पूर्व रूप से क्या सहयोग दिया उस बात को हम देखते हैं। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करके आज उनका ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है, उस बात को हम सामने रखते हैं, तब उनके प्रति कंसिडरेशन होता है, उनके प्रति स्नेह जागृत होता है, फिर कंपल्शन फील नहीं होगा, फिर स्नेह से हम वो परिवर्तन लाएंगे और उसमें हमें भी बहुत खुशी होगी और वो परिवर्तन भी आगे चलकर स्थायी हो जाएगा। तीसरा है कि अरेंजमेंट नहीं है। हमको लगता है क्या करें हम, कोई भी जो हमारे संबंध है इस समय, हमें लगता है कि हमने तो ये चॉइस किया नहीं है, ना व्यक्तियों का चॉइस है ना परिस्थितियों का चॉइस है, ये अरेंजमेंट है, हमको दिया गया, हमने इस परिवार में जन्म लिया, क्या करें, हमको ऐसे बच्चे मिले, क्या करें, हमारा पति ऐसा या पत्नी ऐसा, क्या करें। ये जैसे एक लाइफ का अरेंजमेंट है, लेकिन वास्तव में ये लाइफ का अरेंजमेंट नहीं है, ये एग्रीमेंट है। हमने इसको समझ से स्वीकार किया है, हमको ये एक मौका मिला है, परमात्मा ने कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मौका हमें दिया है। उस जीवन से, उस परिस्थिति से, उस संबंध से हमें क्या बनाना है, ये हमारे हाथ में। तो ये सिर्फ एक अरेंजमेंट नहीं है, ये किसी ने हमारे लिए अरेंज किया है, नहीं। एक एस्पेक्ट से अगर हम कार्मिक अकाउंट से भी देखते हैं, कर्म की फिलॉसफी जो आगे आपको बहुत सुंदर रूप से हमारी जो आदरणीय बहने हैं, जो मुख्य बहने, वो आपको सुबह के सेशन में, लास्ट सेशन में स्पष्ट करेंगी, तो उसमें भी आपको बहुत गहराई से इसका अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं हमारे अपने कार्मिक अकाउंट भी इससे जुड़े हुए। दूसरा, इस समय भी चॉइस है हमारे पास। जैसे हम कई ऐसे जीवन में अनुभव देखते हैं आसपास के लोगों को, आपके अपने जीवन में भी आपने ऐसे अनुभव देखे हैं कि आपके जीवन में आपको कोई ऐसे मौके नहीं थे आगे जीवन में उन्नति करने के लिए, लेकिन उस परिस्थितियों में भी आपने अपनी दृढ़ता से, अपने भविष्य के प्रति फोरसाइट था, आपने अपने हिम्मत से उस परिस्थिति में भी बहुत सुंदर रूप से प्रगति की और सफलता को प्राप्त किया। जैसे हम अपने डॉक्टर अब्दुल कलाम को ही देखते हैं, तो बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ है और बहुत साधारण से उनके जीवन की परिस्थितियां थी छोटेपन में। तो एक लाइफ का अरेंजमेंट नहीं था सिर्फ ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई एक राज था। उसी परिस्थितियों में कैसे उस व्यक्ति ने अपने जीवन को जो चाहिए ऐसे ऊंचते ऊंच दिशा, अपने ही उद्देश्य से, अपने ही हायर पर्पस से, अपने दृढ़ता से, अपने मूल्यों से, अपनी मेहनत से अपने जीवन को कहां पहुंचाया, नहीं। लेकिन हर एक व्यक्ति ने ऐसा अपना जीवन नहीं बनाया है। कई लोग उसी प्रकार की परिस्थितियों को एक अरेंजमेंट के रूप में समझते हुए उसके प्रति हमेशा नकारात्मक भावनाएं रखते, क्या करें मेरा जीवन ही ऐसा है, क्या करें मेरे पेरेंट्स ही ऐसे हैं, क्या करें मेरा भाग्य ही ऐसा है, ये मुझे जीवन ही मिला ऐसा, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला, मुझे शरीर ही ऐसा मिला। जो भी उनके सामने उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी मतभेद, अंदर के भेद हैं, अंदर के वाद विवाद के कारण है कि यही मुझे मिला, ऐसे ही मुझे पेरेंट्स मिले, या ऐसे ही बच्चे मिले, या ऐसे ही पत्नी मिले, या ऐसा ही जीवन मिला। लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं है, ये इसके पीछे आपको मौका है। इसको क्या आपको बनाना है, ये आपके ऊपर है। आपके पास वो साधन परमात्मा ने हमें दिए हैं जो उसको हम जैसा चाहें श्रेष्ठ दिशा में ले जा सकते। तो आपने उसको स्वीकार किया है, एग्रीमेंट है, तो उस रूप से हम दृष्टिकोण से देखें तो वो समाधान सदा काल का होगा। अगर हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज के रूप में समाधान देखते हैं, कंपल्शन या अरेंजमेंट देखते हैं, तो फिर भी नकारात्मकता अंतर में रहती। बाहर में सिर्फ बातचीत हो जाती है, बाहर में हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या है, वो नकारात्मकता, दुख की महसूसता, दमन की महसूसता रहती है, और उसके वजह से फिर अंदर में वो खुशी और संतुष्टता नहीं रहती, और इसलिए फिर उस परिस्थिति में नहीं लेकिन दूसरे कोई परिस्थिति में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस भाव से हम समाधान नहीं करें, लेकिन उस सकारात्मक भाव से, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसमें प्रगति होगी, समझ से और खुशी से। जहां कंसिडरेशन है, आप सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा आत्मीयता से देखते हैं, स्नेह से देखते हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलता है। आप उनके गुणों को देखते हैं, उन्होंने आपको क्या सहयोग दिया है, या उनके जीवन में उन्होंने क्या परिस्थितियों का सामना किया, उस भाव से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं या उसी परिस्थिति को देखते हैं, सामने से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। कल आपको प्रेम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि हम अपने विचारों के आधार से ही क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू का ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे आजू बाजू बनती जाती हैं, हमारे विचार ही उसका आधार है। 10% उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो आपके पास हो रहा है, लेकिन 90% है कि आप उसको क्या महसूस करते हैं, आप उसके प्रति क्या रिएक्शन देते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन में परिवर्तन जब किया जाता है अंतर से, क्योंकि हमने देखा कि अंतर के परिवर्तन की बात है, बाह्य में तब आएगा जब अंदर में समाधान होगा। जब तक दो व्यक्तियों का या स्वयं के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के प्रति भी अंदर में समाधान नहीं है, तब तक बाहर के समाधान को बहुत समय तक हम नहीं रख सकते। तो ये जब समाधान हम कह रहे हैं, तो किन चीजों में अंतर आएगा? पहला है कि भावनाएं समाधान के लिए बहुत सच्ची चीज, हमारी भावना काम करती है। अगर हम उस व्यक्ति के साथ, जैसे सुनाया कि शब्दों से तो हम अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, व्यवहार तो हम फिर से अपना ठीक कर लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी भावनाएं अंदर से शुभ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा? वो जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो उस समाधान को आगे चलकर कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। वो क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जब हम संबंध में आते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ लेते हैं, नहीं, हमको पता पड़ जाता है कि नहीं ये व्यक्ति की भावना मेरे लिए क्या है। तो भावना बहुत काम करती। अगर हमारी भावनाओं में सत्यता हो, कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहां हम बातचीत भी नहीं कर पाते, ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट इतना डीप रूटेड हो गया है बहुत समय तक बातचीत भी अभी नहीं होती है, मिलना भी होता नहीं है, तो वहां परिवर्तन कैसे, कहां से शुरू करें, क्योंकि इस समय तो वो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो वहां हम देखते हैं कि हम अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाते हैं। जब हमारी भावनाएं और हमारे विचार उनके प्रति पॉजिटिव होते जाते हैं तो समय अनुसार जरूर होगा कि ऐसा समय आएगा जहां ऐसा मौका होगा जो आपस में बातचीत करना सहज हो जाएगा, लेकिन शुरुआत हमको अपनी भावनाओं से करनी है। दूसरा है कि निर्णय, जो हमने निर्णय लिया कि अच्छा अब हमने समाधान कर लिया, अभी हमको बीती बातों को याद नहीं करना है, आप जो मिस्टेक्स उनके हैं या आपके, हमको उसको याद नहीं करना है। तो जो हमने निर्णय लिया समाधान के लिए, उस निर्णय को कायम रखना है। ऐसे नहीं कि फिर से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर से आपने पास्ट की बातें याद की और आपने कहा ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, नहीं। जो निर्णय आपने लिया समाधान के लिए, वो निर्णय में आपको दृढ़ रहना आवश्यक है। अगर आपने ये निर्णय लिया, अच्छा इस बात के लिए अभी हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये फुल स्टॉप हो गया, अब सिर्फ ये चीजों को हम आगे देखेंगे, तो फिर वो फुल स्टॉप करना आवश्यक है। अगर आपने कोई निर्णय लिया कि हाँ उनके पास हम ये बात नहीं फैलाएंगे, आपस में ही फैमिली में ही ये बात रखना है और यहाँ ही हमको इसका समाधान करना है, तो वो निर्णय आपको पालन करना जरूरी है। तो इसलिए जो निर्णय लिया आपने समाधान के लिए, वो निर्णय में दृढ़ रहना आवश्यक है। अगर वो निर्णय में आप दृढ़ नहीं रहे तो क्या होगा, वो सामने वाले व्यक्ति को फिर से कंप्लेन होगी, फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है फिर से उभर आ जाएगा। तीसरा है विचारों में क्रिएटिविटी, अर्थात रचनात्मक विचारधारा। जो अभी हम सोच रहे हैं उस दिशा से हम नहीं सोचें, अलग रूप से सोचें। तो हम देखते हैं कि जो अभी वर्तमान में हम सोच रहे हैं उससे तो सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि जब समाधान आपको करना है तो आपको अपने विचारों को परिवर्तन करना होगा। आप उन्हीं विचारों से समाधान नहीं कर सकते हैं जिन विचारों से समस्या का निर्माण हुआ। जब समस्या का निर्माण हुआ तब आपके जो विचार हैं उसी विचारों को अगर आप रखेंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो विचारों को परिवर्तन करना आवश्यक है। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि अगर आप जो कुछ करते हैं, जो आप करते हैं, इफ यू ऑलवेज डू एज यू ऑलवेज डन यू विल ऑलवेज गेट एज यू ऑलवेज गॉट। जो आप हमेशा करते हैं वो आप करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा मिलता आया है। अब आपको कुछ और चाहिए, अभी जो आपको प्राप्त हो रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं, कुछ और चाहिए, तो कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसा ही सोचेंगे जैसा आप हमेशा सोचते आए हैं तो आप वैसा ही करेंगे जैसे आप हमेशा करते आए। अगर आप वैसा ही हमेशा सोचेंगे तो वैसा ही करेंगे। तो कुछ और करने के लिए क्या करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए कुछ नया करना होगा, कुछ नया करने के लिए कुछ नया सोचना होगा। तो हमारे विचारों में रचनात्मकता चाहिए, अलग विचारधारा। तो अभी जो हम सोच रहे हैं तो जिस प्रकार की नेगेटिव और वेस्टफुल थिंकिंग से, व्यर्थ विचारों से वो समस्या का निर्माण हुआ, वही प्रकार की विचारों में अगर हम रहेंगे तो समाधान हो सकता है, नहीं। तो मुझे कोई और सकारात्मक चिंतन, कोई और रचनात्मक चिंतन करना होगा, वो विचारों को दूर कर कोई और विचार सामने लाना होगा। जैसे अगर हम कोई व्यक्ति को देखते हैं कि वो दिल्ली में कोई स्थान ढूंढ रहा है, उसके पास मैप है, उस मैप में उसने देखा भी है कि कहाँ है, ये मैप में महात्मा गांधी रोड है, और वो ढूंढ रहा है महात्मा गांधी रोड कहाँ है, ये वो स्थान ढूंढ रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है स्थान, मैप से वो देख रहा है। तो फिर एक व्यक्ति को वो पूछता है, देखो मेरे पास मैप भी है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है ये स्थान, मैं क्या करूं, मुझे मदद कीजिए। तो व्यक्ति कहता है अच्छा, मैप देखता है कि अरे ये मैप जो है वो तो बंबई का है, तो महात्मा गांधी रोड वहां भी है, बंबई में भी है, लेकिन मैप तो बॉम्बे का है, तो बॉम्बे के मैप से आपको दिल्ली में रास्ता मिल सकता है नहीं। तो जिस विचारों से समस्या का निर्माण हुआ है उन विचारों से आप समाधान नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ही अपने विचारों को पहले बदलना होगा। बार बार उन पुराने विचारों में अगर चले जाएंगे, ऐसा हुआ, उसने ऐसा ही किया, इसलिए ऐसा ही है, तो वही विचारों को हम सोचते रहेंगे तो क्या होगा, समाधान नहीं। वो विचारों को परिवर्तन करना होगा। और जैसे हमने कल देखा मन के ऊपर कि विचारों को अगर नकारात्मक और व्यर्थ विचारों को परिवर्तन करना है तो अपने आप को सकारात्मक विचार देना होगा। कल आपको उदाहरण भी जरूर दिया होगा बहन ने कि जैसे मन बच्चा है, तो बच्चे के हाथ में अगर कोई ऐसी चीज है जो नुकसानकारक है तो क्या करते हम, नहीं कोई हाथ में कभी ब्लेड आ गया या कोई ऐसी कैंची आ गई, और बहुत छोटा है, एक दो साल का ही बच्चा है, तो उसके पास तो समझ नहीं है कि इससे मुझे नुकसान होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन बच्चा और भी वो चीज को पकड़ लेता है, नहीं मुझे देना नहीं है, क्योंकि बच्चा है ना तो खेलना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरी चीज देते हैं। जैसे उसका आकर्षण दूसरी कोई चीज में चला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो चीज को छोड़ देगा। तो विचारों में भी वो जो नेगेटिव और वेस्ट चिंतन चल रहा है उसमें जब आप अपने आप को कोई और अच्छा विचार देंगे, जो सकारात्मक है, जो रचनात्मक है, जो कोई और सुंदर परिस्थिति या समाधान की दिशा में वो विचार है, तो ऑटोमेटिकली मन वो नेगेटिव और वेस्ट चिंतन को छोड़ देगा। तो इसलिए क्रिएटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है, सिंसियर आइडियाज, अर्थात जब भी कोई व्यक्ति कोई समस्या में है तो उनको हम कोई अच्छी युक्ति दें, अच्छे विचार दें। कोई भी कोई समस्या आपके साथ व्यक्त करता है तो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर थक कर घर आ जाता है और फिर वो कहता है कि आज ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, और सपोज उनके जो वाइफ है या जो भी घर में है वो उनको कहते हैं आप तो हमेशा प्रॉब्लम ही बोलते रहते हो, घर में आके भी अपने प्रॉब्लम ही डिस्कस करते हो, तो तुरंत क्या होगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो परिस्थिति को समझकर जो हम उनको युक्ति दे रहे हैं, जो हम उनको आइडियाज दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, उसमें सिंसेरिटी हो, उनके परिस्थिति के प्रमाण हो, ऐसे ही नहीं कि हम अपनी भावनाओं से, अपनी मनोस्थिति से वो विचार दे दें, सिंसेरिटी हो उस आइडिया में, उस विचार में। नहीं तो वो कई बार हम भले वो भावना से नहीं भी कह रहे हैं लेकिन वो वाद विवाद का कारण बन जाता है। तो उस समय कई बार हमें देखना है कि हम जो आइडियाज व्यक्त कर रहे हैं उसमें सिंसेरिटी हो, उस समय की उनकी परिस्थिति, उस व्यक्ति की मनोस्थिति को समझते हुए उनके उनको मदद के लिए हम वो विचार कहें, उनके लिए उनको सहयोग के प्रति वो विचार हो, नहीं तो हमारी भावना नहीं होगी लेकिन फिर से वाद विवाद हो जाता है। क्लियर एटीट्यूड, स्पष्ट वर्तमान के आधार से हम अपनी मनोवृत्तियों को रखें, भूतकाल की अनुभूतियां, भूतकाल की बातों को अपने मनोवृत्ति के प्रभाव में नहीं रखें। जो भी भूतकाल का अनुभव है, किसी ने हमको उसके बारे में कुछ कहा है, इस व्यक्ति के बारे में, जैसे आपको बहुत अच्छा उदाहरण पहले भी गीता बहन ने दिया कि कोई आपको नहीं ऑफिस में कोई कह देता है कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा है तो हम उसी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं। परिवार में भी कई बार कोई और हमें नहीं कहता है लेकिन हमारे अपने पूर्व अनुभव हैं और हम उसी बात के प्रभाव में उस व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको स्पष्ट मनोवृत्तियां नहीं कहेंगे क्योंकि भूतकाल का जो किचरा है, भूतकाल की जो बातें हैं, उसके प्रभाव में आकर हम उस मनोवृत्ति से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन शुद्ध मनोवृत्ति हो, स्पष्ट मनोवृत्ति हो, वर्तमान से संबंधित हो। कई बार हम कहते हैं कि हम लोग परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, जो भी हम संपर्क में आ रहे हैं और हमें जिसमें जिनके साथ वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, हमको लगता है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने विचार उनके बारे में चेंज करते हैं, हमारे मन में उनके प्रति जो हमारे विचार है वो चेंज करते हैं हम नहीं। उसमें हम देखते हैं कई बार पास्ट की ही बातें या किसी ने जो सुनाई हुई बातें हैं या अपने अनुभव से जो नकारात्मक बातें हैं उसी को हम रखते हैं और उसी भाव से उसी वृत्ति से हम समाधान करने की कोशिश करते हैं तो वो समाधान मुश्किल हो जाता है। क्लियर एटीट्यूड्स, पास्ट की बातों को निकाल दें, पास्ट के जो भी नकारात्मक हमारे अनुभव हैं या उस व्यक्ति के बारे में जो हमने सुना है वो बातों को, या भविष्य के लिए कोई इनसिक्योरिटीज है, भय है, उन सबको हम निकाल दें। स्पष्ट शुद्ध मनोवृत्तियां, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, संबंध, हर एक जो संबंध है उसमें अर्थ महसूस करें। सिर्फ संबंध नहीं लेकिन उसमें क्या अर्थ है, उनका क्या योगदान है आपके जीवन में। जब हम हर एक संबंध के पीछे महत्व को देखेंगे, योगदान को देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे वो संबंध में समीपता आती जाएगी। चाहे वो माता पिता का बच्चों के साथ जो संबंध है, तो बच्चे भी अपने माता पिता के उस संबंध को, सिर्फ एक माता पिता नहीं है, चलो पिता है या माता है इसलिए उनका पर भी है हमें संभालना या हमें सब कुछ देना, वो एक बात है, लेकिन उनका क्या योगदान आपके जीवन में रहा है, उस संबंध के पीछे क्या अर्थ है, कितना सुंदर योगदान है उस संबंध का उनके जीवन में, उससे उनको क्या मदद मिली है। चाहे पति पत्नी का, चाहे दो फ्रेंड्स का, चाहे भाई और बहन का, लेकिन आपस के उस संबंध के महत्व को अगर हम समझना शुरू करें कि उस संबंध से एक दूसरे को क्या योगदान मिला है, क्या सहयोग मिला है, क्या जीवन में आपको मदद मिली है उससे, तो ऑटोमेटिकली वो संबंध में समीपता आती जाएगी। नहीं तो हम कई बार देखते हैं कि अगर हम मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में नहीं हैं, अगर हम एक दूसरे के साथ संबंध के महत्व को नहीं महसूस करते हैं, तो क्या हो जाता है, हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं ही, तो उनको करना ही है, लेकिन उनका क्या योगदान है उस चीज को अगर हम समझते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो जो कार्य कर रहा है उसके कार्य को, या उसके जो भी आपको सहयोग दे रहा है उसके महत्व को अगर आप समझेंगे और उसको वो शेयर करेंगे, उसको बताएंगे, तो वो संबंध में समीपता होगी। अगर हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, एक बच्चा भी कुछ अगर अच्छा करके आता है स्कूल में पढ़ाई, तो जब माता पिता उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसको कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा, तुमने टेस्ट में अच्छी तरह पढ़ाई किया, तो क्या होगा, उसको प्रेरणा होती है कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे अच्छा करके आना है ताकि मम्मी मुझे वापस या डैडी मुझे वापस शाबाशी दे। तो ऐसे हर एक संबंध में, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, हर एक संबंध में जो एक दूसरे से हमें सहयोग मिल रहा है, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो आपस में ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि हमारे कलीग्स का आपस में संबंध हो, या बॉस और जो सबॉर्डिनेट का संबंध हो, लेकिन हर एक का योगदान आपके जीवन में क्या है, क्या सहयोग आपको मिला है उनसे, उसके महत्व को अगर आप समझेंगे तो उस संबंध में समाधान आना या उस संबंध में आपस में सद्भावना आना सहज हो जाता है। और लास्ट जैसे हमने देखा कि नवीनता चाहिए, हर दिन हमें अपने उस अनुभव में कुछ नवीनता, पुराना जो कुछ है उसको हमें भूलना होगा, जैसे आपको सुंदर रूप से कहा ही प्रेम भाई ने कि लेट गो करना होगा। पुराना कुछ भी रखेंगे तो समाधान में रहना बहुत मुश्किल है, तो पुराना जो कुछ है उसे हमें लेट गो करना होगा। नवीनता जो है अभी के लिए, वर्तमान में अब क्या मुझे करना है, इसमें और क्या नवीनता लानी, और किस रूप से संबंध में निखार लाना है, और किस रूप से संबंध में और समीपता लानी है, और किस रूप से इस कार्य में हमें और सफलता लानी है, तो नवीनता, न्यूनेस, तब आपको भी उमंग उत्साह रहेगा। पुराने को ही आप देखते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो क्या होगा, वो जो सोच है, वो जो समय हमने बिताया, वो क्या है, सफल हुआ, हम याद करते रहते ना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब पुराने का ही सोच रहे हैं, तो क्या होगा उससे, कुछ आपको एनर्जी मिलेगी, कुछ उससे आपको खुशी मिलेगी, कुछ उससे प्राप्ति मिलेगी, नहीं। ये वर्तमान पल जो है वो तो हमारे हाथ में है, उसको उस प्रयोग करके हमें नवीनता लानी। पास्ट को तो हम सोचेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो चला गया, लेकिन वर्तमान और भविष्य का भी आधार वर्तमान है, तो तीनों कालों में अगर देखें तो वर्तमान और भविष्य हमारे हाथ में। पास्ट को भी अगर देखें तो अगर अभी हम पास्ट के प्रति भी नवीनता रखें, पास्ट में चलो उसने ऐसा ऐसा मुझे कहा, वो बहुत मुझे उस समय बुरा लगा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अरे अभी मैं उस बात को लगता है कि अरे मेरे में उसकी वजह से टॉलरेंस आ गई, अब मैं कोई भी बात का सामना कर सकता हूँ, अब मैं ऐसे कोई भी संबंध को मैं समाधान कर सकता हूँ। तो नवीनता से जब हम उसी बात को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में वो दृढ़ता और उमंग उत्साहता है। तो न्यूनेस इन लाइफ ये समझौता करने में हमें उमंग उत्साह देगा। तो उस रूप में हम देखते हैं कि ये बातें जब अंतर में आती जाती है, अगर आप देखें चाहे फीलिंग्स है, चाहे निर्णय है, चाहे विचार है, चाहे आइडियाज है, ये सब अंतर की ओर है, बाहर नहीं अंदर में। तो अंदर में जब ये परिवर्तन आता जाता है तो बाह्य रूप से वो सहज हो जाता है। अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, और उसके पहले हम उस एक्सरसाइज को देखने के पहले हम ये देखेंगे कि परिवर्तन में बाधा कौन सी है। अब जो आपने देखा कि वो रेजोल्यूशन आप करना चाहते हैं, वो सब चीज आप अपने में लाना चाहते हैं, समझ है, लेकिन किस बाधा की वजह से वो चीज हम प्रयोग प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते। तो हमें अपने अंतर के उस दुश्मन को जानना होगा। नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ, ये एक बहुत सुंदर शब्द है, मैं आपको पढ़ूंगी फिर उसका हम विश्लेषण देखेंगे। ये एक चाइनीज वॉरियर ने ये शब्द कहे हैं, इसमें लिखा है यू नो योर सेल्फ बट नॉट योर एनिमी, फॉर एवरी बैटल यू विन यू विल एक्सपीरियंस डिफीट। यहां जब हम एनिमी कह रहे हैं, हम बाहर के व्यक्ति को एनिमी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम अपने ही कोई ना कोई नकारात्मक भावना या मनोविकार को हम एनिमी के रूप में देख रहे हैं। तो हमने अपने आप को जाना, अर्थात अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी विशेषताओं को हमने जाना, लेकिन हमने अपनी कमजोरियों को नहीं जाना। तो क्या होगा, या जाना भी लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये मेरी कमजोरियां हैं, तो क्या होगा, हम थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि हम अपनी योग्यताओं को जानते हैं ना, हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, तो उसको प्रयोग करके हमको थोड़े समय के लिए सफलता मिलेगी। लेकिन क्या होगा, हम अपने जो विशेषताएं उससे हमको वो कार्य सफल हो जाएगा, हमको हम एग्रेसिव हैं तो हमको टेम्पररी किसी का हमको सहयोग भी मिल जाएगा, लोग हमारी बात मान लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों को नहीं जाना है तो थोड़े समय के बाद हम देखेंगे लोग हमसे दूर होते जाएंगे। जो सदा काल का उनका सहयोग चाहिए, जो उस संबंध में आत्मीयता चाहिए, वो नहीं होंगी। जो हम जब उनका सहयोग हमें आवश्यक होगा तब हमें चाहिए, तब वो मिलेगा नहीं। उस पोजीशन से या भय से तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मीयता जो संबंध में है वो समाप्त होती जाती। तो फिर क्या होगा, तब हमें लगेगा कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। जैसे हम पेरेंट्स के बच्चों के साथ अगर देखें तो कभी कभी हम देखते हैं पेरेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन है, समझदार भी हैं, तो बच्चों के ऊपर डिसिप्लिन रखते हैं, लेकिन जो आज के समय के वातावरण के अनुसार जो आपसी जो एक फ्रेंडशिप होना चाहिए बच्चों के साथ वो नहीं है। नहीं, पेरेंट्स पेरेंट्स के रूप में है, उस रोल को ही समझते कि आखिर हम तो बड़े हैं, हम समझदार हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। तो थोड़े समय के बाद वो देखते हैं कि बच्चे उनके साथ हर बात शेयर नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा अपना समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स को नहीं मालूम है, वो उनके फ्रेंड्स को ही पता है। तो हम देखते हैं कि वो संबंध में वो कमी महसूस होती। तो हम अगर अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो दिखाया है कि इफ यू नो योर एनिमी बट नॉट योर सेल्फ डिफीट अवेट्स यू। माना अगर आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं लेकिन आप अपनी विशेषताओं को नहीं जानते तो भी क्या होगा, सफल होंगे। आप जानते हैं कि आप किस किस चीज में आप कमजोर हैं, ये वीकनेसेस, ये आपकी कमजोरियां हैं, लेकिन आप अपनी विशेषता को भी नहीं जानते, आप किस बात में अच्छे हैं वो नहीं जानते, तो क्या होगा, अंदर में क्या आ जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, ऑटोमेटिकली हीन भावना आएगी। तो फिर भी हम सफल होंगे नहीं। इफ यू डोंट नो योर सेल्फ एंड यू डोंट नो योर एनिमी, विक्ट्री विल एल्यूड यू फॉर एवर। अर्थात अगर आप अपने आप को भी नहीं जानते और अपनी कमजोरियों को भी नहीं जानते तो कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो दोनों चीजों का संतुलन आवश्यक है। हमें अपनी शक्तियों को तो जानना ही है, क्योंकि जैसे देखा कि स्वमान में रहना आवश्यक है, चाहे कोई भी समझौता हो, चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें अगर हमें समझौता लाना है तो अपने स्वमान में रहना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ हमें अपनी कमजोरियों को भी पहचानना आवश्यक है। पहचानने से क्या होगा और उसको स्वीकार करने से क्या होगा, हमें पता है कि ये हमारी थोड़ी कमजोरी है, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो क्या होगा, हम उस पर अटेंशन रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो कमजोरी व्यक्त न हो जो फिर से वो संबंध में आपसी विवाद हो, या अगर भी हम कभी वो कमजोरी व्यक्त कर लेते हैं तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना, हमने समझा है कि हाँ हमको गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत थोड़े समय के बाद जाकर सॉरी कह देंगे या कोई बातचीत करेंगे, इनिशिएट करेंगे ताकि फिर से समझौता हो जाए। तो कमजोरियों को पहचानने से क्या होगा, उसके लिए अटेंशन रहेगा, उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर हम कहेंगे एक अटेंशन रहेगा, और हम सामने वाले व्यक्ति के प्रति नम्रता रखेंगे कि हाँ ठीक है ये हमसे गलती हो गई, ये हो गया। लेकिन अगर हम कमजोरियों को नहीं जानते हैं तो फिर अहम भाव ही रहेगा। लेकिन देखा, अगर कमजोरियों को जानते हैं लेकिन विशेषताओं को नहीं जानते हैं तो हीन भावना रहेगी, हम हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे। दोनों ही चीजें हैं, या तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जहां हम अपनी कमजोरियों को नहीं जानते वहां एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, जहां हम अपनी विशेषताओं को नहीं जानते हैं वहां हम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, हमेशा अपने प्रति हीन भावना में रहेंगे। अब एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके लिए आपको आपके बाजू में एक सीट खाली रखनी है, तो आपको थोड़ा सा स्प्रेड आउट होना है। हमारे शशांक भाई, रघु भाई आपको मदद करेंगे, थोड़ा आपके बाजू में एक सीट खाली रखनी है, ठीक है? तो हर एक थोड़ा स्प्रेड आउट हो जाए, थोड़ा पीछे आपको चाहिए तो कुर्सियों पे चले जाए, आगे भी स्थान है, आपके बाजू की सीट खाली होनी चाहिए। ठीक है रघु भाई, थोड़े समय के लिए अब ये के बाद आपको याद करना है कि आपके साथ इस समय वर्तमान में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके साथ आपको लगता है कि बार बार कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके परिवार में वो व्यक्ति हो, चाहे कार्य क्षेत्र पर हो, चाहे सामाजिक कोई कार्य जहां आप कर रहे हैं वहां कभी आपस में वाद विवाद हो, कोई भी एक व्यक्ति को याद कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें आपको लॉन्ग टाइम के लिए जो सोल्यूशन है वो करने की आवश्यकता है। और थोड़े समय के लिए इमेजिन कीजिए कि वो आपके बाजू में वो एम्प्टी चेयर पर बैठे हैं, ठीक है? तो एम्प्टी चेयर इसलिए है कि थोड़े समय के लिए आप इमेजिन करें कि वो वहां बैठे हैं। अब हम थोड़े समय के लिए अपने मन में कुछ सकारात्मक चिंतन करेंगे और फिर हम आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देंगे। तो कुछ समय के लिए अगर मेडिटेशन म्यूजिक हो, थोड़े समय के लिए हम अपने मन में समाधान के प्रति चिंतन करेंगे। उस व्यक्ति को मैं याद करती हूं, या शायद ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा अपने साथ भी हो सकता है, तो अपने आप को ही मैं याद कर रही हूं। उस व्यक्ति को मैं अपने बाजू में बिठा रही हूं, जो भी बातों को मैंने समझा है, अनुभव किया है, उसके आधार से मैं जरूर चाहती हूं कि इस संबंध में श्रेष्ठ समाधान आए, सकारात्मकता आए, उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध में समीपता आए। आत्मिक भाव से भी जब मैं उस व्यक्ति को देखती हूं तो उनके प्रति भी आत्मीयता महसूस होती है। उस व्यक्ति की कई कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन साथ साथ कई विशेषताएं भी हैं। उन विशेषताओं को देखने से उनके प्रति शुभ भावना महसूस होती है। इस सुंदर तपस्या के वातावरण में जहां ईश्वरीय पालना का हम अनुभव कर रहे हैं, जहां चारों ओर सकारात्मक प्रकंपन है, यहां इस वातावरण में मुझे इस संबंध में समाधान लाना अति सहज महसूस हो रहा है। मन की दृढ़ता से मैं इस संबंध में सदाकाल के लिए समाधान लाने की इच्छुक हूं। पास्ट की सभी बातों को समाप्त करते हुए, फुल स्टॉप पे करते हुए मैं परमात्मा को सौंप देती हूं। वर्तमान में उस व्यक्ति के प्रति शुद्ध विचार, शुद्ध दृष्टिकोण से मैं उसे देखती हूं। उस संबंध को और सकारात्मक बनाने के लिए आपस में सहयोग का अनुभव करने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए मैं समाधान करने में स्वयं इनिशिएटिव लेना चाहती हूं। मैं पहल करना चाहती हूं। मैं उस व्यक्ति से क्या बातचीत करना चाहूंगी, अपने अंतर मन की शुभ भावनाओं को, श्रेष्ठ विचारों को, परिवर्तन की दृढ़ता को किस रूप से व्यक्त करना चाहूंगी, उस व्यक्ति को मुझे क्या कहना है। शुभ भावना से, दिल के स्नेह से मैं उसको क्या कहना चाहूंगी। उनके साथ क्या बातें व्यक्त करना चाहूंगी। आप अपने किताब में कुछ विचार लिखें, व्हाइट लाइट ऑन कर दें। अब आप अपने किताब में उन शब्दों को लिखें कि आप उस व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे, किस रूप से अपनी शुभ भावनाएं समाधान की दिशा में, जो आपके मन के विचार चल रहे हैं वो आप उनको किस रूप से व्यक्त करना चाहेंगे। प्रैक्टिकल में उसको आप क्या कहना चाहेंगे, या आप अपने शब्दों में ही उस किताब में लिखें। ये शब्द आपके पास ही रहेंगे, इसलिए आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। आपके अंतर मन से आप उस व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे, उसके प्रति आपके क्या बोल होंगे, क्या डायलॉग आपका आपस में होगा। जो भी आप लिखेंगे वो आपके अंतर की शुभ भावनाओं के आधार से, और जरूर यहाँ इस तपस्या के वातावरण में परमात्मा की भी शक्ति उन शब्दों में भर रही है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आपका अपने साथ ही है, तो अपने प्रति भी आप कौन सी सकारात्मक भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपने लिख लिया होगा। आपको कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है आपको? बहुत हल्का लग रहा है। और सकारात्मक भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। सकारात्मक भाव अंतर से आ रहा है। सहज भी यहाँ लग रहा है। नहीं, जो बात वास्तव में वहां परिस्थिति में जो मुश्किल लग रहा था, यहाँ सहज लग रहा है। और मन का बोझ जैसे एकदम हल्का हो गया। क्षमा भावना पैदा हो गई। और जी और यस, फिर लगता है कि अभी प्रैक्टिकल में जब हम उसी संबंध में सिर्फ जाएंगे तो बहुत सहज हो जाएगा। हम एक अलग रूप से उनके साथ बातचीत कर सकेंगे, दृष्टिकोण से मिलेंगे। और जी रिजल्ट हमको बेटर मिलेगी। जी मैत्री का विचार आ गया, उसी कॉन्फ्लिक्ट में मैत्री भाव महसूस हुआ। जी ज्यादा उनमें गुण दिखाई देते हैं। पहले अवगुण ज्यादा दिखाई देते, सभी गुण ज्यादा दिखाई देते। सही बात है। और
मन में आत्मविश्वास बढ़ता है।
मन में आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाधान हो ही जाएगा, ताकि हमारा जीवन बहुत ईजी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। डिफरेंट अप्रोच अब मिल जाता है, जो पहले हम सोच नहीं पाते थे उस रूप से अभी हम सोच पा रहे हैं। डिफरेंट अप्रोच हो जाता है, टेंशन रिलीव हो जाता है। हमारी कमजोरी क्या, उसका अनुभव हो जाता है, उसको हम स्वीकार भी कर पाते हैं। और ये अंदर से आभास भी होता है कि इसको भी हम जीत लेंगे। ये भी जरूरी है, क्योंकि ये भी नहीं है कि वो कमजोरी ही हमारे मन में रहे। उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इसको हम जीत पाएंगे जरूर। हमारे में हम आत्मविश्वास भी जागृत करते हैं कि इसको भी हम जीत लेंगे। अभी उनकी बात का हमको बुरा नहीं लगेगा, हम डिस्कस करेंगे। अभी बातचीत कर, हम इनिशिएटिव लेंगे बातचीत करने के लिए। ये मन में आ गया कि पॉसिबल है, हर एक कितना भी कोई डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना पॉसिबल है, ये मन में आ गया। हाँ, ये विश्वास आ गया कि अभी उनके साथ भी हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। जी अब लग रहा है कि हमारी सोच जो है वो सही दिशा में चल रही, इसलिए हमें खुशी महसूस होती। जी राग द्वेष ईर्ष्या समाप्त हो रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है। समानता आ गई, उस संबंध में एक दूसरे के प्रति हमें एक समानता महसूस होती। जी अनुकूल हो रहे हैं संबंध, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी उस संबंध में। प्रेम विश्वास बढ़ रहा है उससे। जी हाँ जरूर, वही भावना से करेंगे, फिर याद करेंगे ना कि हमने ये अनुभव किया था। हाँ नहीं, वो सीढ़ी तो है, लेकिन आपने जो अनुभव फिर मन से आप ज्ञान स्वरों में वापस आ जाना। सही बात है। और हाँ, मन में ही ज्ञान स्वरूप फील करेंगे, और ज्ञान स्वरूप में वो ईश्वरीय जो पालना मिल रही है और ईश्वर का जो संग मिल रहा है वो महसूस करेंगे। क्योंकि यहाँ विशेष ये आप अनुभव करेंगे कि ईश्वर के साथ आपके संबंध में बहुत समीपता महसूस करेंगे, क्योंकि वातावरण में भी ऐसे तपस्या का वातावरण है और बहुत सहज योग लगेगा, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली वो ईश्वरीय संग और उसके साथ का अनुभव होगा। तो जो आप श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, जैसे परमात्मा हमें एक साथी बनकर स्नेह से उसमें शक्ति भर रहा है और वो प्रैक्टिकल में सहज हो जाएगा, तो फिर से आपको ये वहां याद आएगा जरूर। और सीधी नहीं, लेकिन जो आपने अनुभव किया, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव को कभी भूल नहीं सकता, ये तो बात है ही। तो यहाँ आप जो अनुभव कर रहे हैं उसको सीधी की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप सेकंड में पहुंच जाएंगे यहाँ मन से, ये आपने अनुभव किया है तो वो अनुभव तो भूलेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो बातें फिर से याद आ जाएंगी। तो उस रूप से हम देखते हैं चाहे हमारे स्वयं के साथ, लेकिन औरों के साथ वो ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत सहज है। वन स्लाइड बिफोर, तो ये जैसे समाधान के लिए ब्रिज हम बनते जाएं, अपने प्रति भी, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, औरों के लिए, और जब हम साक्षी होकर कोई और के कॉन्फ्लिक्ट को भी देखते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ है, आपने अनुभव कर लिया है, तो आप सहयोग दे सकेंगे। अब आपको अपने लिए तो सहयोग है ही, आपने तो समझा ही है, लेकिन आप हर एक व्यक्ति तो कितने लोगों को प्रभावित करते हैं ना, क्योंकि आप रोज कितने लोगों से मिलते हैं और रोज कितने ऐसे अनुभव हैं जो आप देखते हैं कि और लोगों की कॉन्फ्लिक्ट्स को भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वहां भी आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो ब्रिज बन सके। तो जैसे कहा जाता है कि हमें सुई धागा का काम करना है, कैंची का नहीं, नहीं? तो कई बार हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म में जो कई बार सिर्फ एक हम देखते हैं कि भावना ना भी हो, लेकिन हमको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यहाँ की बात वहां कर लेते हैं, या किसी को कोई बात सुना देंगे जिससे उनके मन में उस दूसरे व्यक्ति के प्रति भावना जो है नेगेटिव हो जाती है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का एक स्वभाव है। तो अभी हमें कॉन्फ्लिक्ट अपने तो रिजॉल्व करने हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी सदा एक ब्रिज बनना है, जहां दूसरों में भी आपसी समझ आ सके, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है तो अपने अनुभव की अथॉरिटी से अभी हम दूसरों को कह सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भी उससे प्रेरणा लेंगे, तो आपका बहुत सहयोग औरों को भी मिलता जाएगा, क्योंकि उनको भी महसूस होगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कर रहे हैं, हम भी इसको कर सकते हैं, तो वो ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम संक्षिप्त में सभी पॉइंट्स को, जी बंदे, हाँ आपने ज्वाइन कर ही लिया है अभी ब्रिज को, और उसको तो परमात्मा की शक्ति से और भी मजबूत यहाँ हो ही जाएगा अभी दो तीन दिन में, तो हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारे मन में इस समय क्या हुआ, शुभ भावनाएं व्यक्त हुई। अब वो शुभ भावनाओं को हम शब्दों में, फिर जब हम मिलेंगे तो हम व्यक्त करेंगे, और फिर कर्मों के द्वारा एक दूसरे के प्रति हमें रिस्पेक्ट होगा, तब हार्मोनाइजेशन होगा, मन विचार और कर्म तीनों में समानता आएगी। तो ये जो भावनाएं हैं, फिर हमें अपने शब्दों में और अपने कर्मों के द्वारा इसको व्यक्त करना है, तब उस संबंध में ऑटोमेटिकली आपसी समता और समाधान सहज हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स अगर हम संक्षिप्त में लास्ट में देखें, लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट, पॉइंट्स ऑफ रेजोल्यूशन। जैसे पहली बात है, रिजॉल्विंग इज नॉट ऑलवेज ब्रिंगिंग अबाउट एक्सटर्नल सॉल्यूशन बट इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। ये हमने बात समझा कि एक्सटर्नल लेवल पर कई बार हम इमीडिएट रूप में सॉल्यूशन तो ले आते हैं, लेकिन उसके प्रति हमारी समझ में भी, हमारी भावनाओं में भी परिवर्तन आना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो समाधान है, वो बहुत समय तक नहीं चलता है, फिर वापस थोड़ा समय के बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो अंतर की समझ में, अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस लाना आवश्यक है, उसमें स्नेह, उसमें आत्मीयता, उसमें क्षमा भाव, उसमें शुभ भावना, उसमें पास्ट को भूलना, ये आवश्यक है। It is nothing wrong in having conflicting ideas, but resolution is all about convincing our ideas. ठीक है, हमें विचारों में अंतर होना आवश्यक है, ये हो ही नहीं सकता है कि हम सभी के विचार एक जैसे ही हमेशा हों, उसमें अंतर है अगर तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम किस रूप से अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति के पास रखते हैं, उनको उस विचार के बारे में किस रूप से समझाते हैं। अगर हम बहुत जिद से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे विचारों से दूर होता जाता है, और उनके मन में ये आता है कि नहीं, मुझे इनकी बात सुनना ही नहीं, इनकी बात मुझे स्वीकार ही नहीं करना, ये क्यों अपनी बात को मेरे ऊपर थोपना चाहता है। तो किस रूप से हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, कैसे, किस भाव से, उनकी बात को सुनकर समझकर फिर उस आधार से अपनी बात को हम रखते हैं तो वो बात व्यक्ति हमारी बात को समझने के लिए तो प्रयास करता है, लेकिन अगर हम राइट रूप से कन्विंस नहीं कर रहे हैं, थोप रहे हैं अपने विचारों को, तो वो विचार वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो अंतर होना आवश्यक है, वो तो जरूरी है, हर एक के विचारों में अंतर आएगा कभी ना कभी, लेकिन किस रूप से वो विचार को हम रखते हैं ये आवश्यक है। तीसरी बात, when we reach a point of resolution, we don't turn back, wait or burn inside, we bring a change in others with least effort. माना हम जब भी अंतर से हमारा वो समाधान हो गया तो हम फिर ये नहीं सोचते अरे वो व्यक्ति बदला नहीं, उसने मेरे साथ व्यवहार चेंज किया नहीं, वो नहीं हम सोचते हैं, उसने कितना किया मैं कितना कर रहा हूँ, ये हम गिनती नहीं करते। वो अपने समय पर चेंज होगा ही, हम जानते हैं, अभी हमने देखा है कि संस्कार परिवर्तन किस रूप से होता है, वो तो आपने समझा है, गीता बहन ने भी आपको समझाया, पहले दिन आत्मा का लेसन में भी आपने देखा कि अंतर की वो समझ जब परिवर्तन हो जाती है और योग अभ्यास के द्वारा जब हमारा मनोबल हमारा स्वमान बढ़ जाता है तब हम वो परिवर्तन ला सकते। तो उस व्यक्ति को भी हमें समय तो देना होगा, वो व्यक्ति को भी परिवर्तन जरूर होगा लेकिन अपने समय पर। लेकिन अगर हम बार बार देखते रहे वो कितना किया उसने, उसने चेंज किया या नहीं, उसके बोल में मेरे साथ अंतर आया नहीं, उसके व्यवहार में अंतर आया या नहीं, वो अगर हम काउंट करते रहेंगे तो उसमें समाधान सहज नहीं है। या अंदर ही अंदर हम सप्रेस करते रहेंगे, बाहर से समाधान लाया लेकिन अंदर ही अंदर वो बर्न करते रहेंगे, क्यों ऐसा हुआ, उसने मेरी बात ये नहीं स्वीकार की है, वो अंदर वो अभी तक कोई ना कोई भावनाओं में नकारात्मकता है, तो वो समाधान सहज नहीं। दूसरों में परिवर्तन अपने समय पर लाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की क्षमता अपनी अपनी है, हर एक व्यक्ति की समझ अपनी अपनी है, हर एक व्यक्ति की सर्कमस्टेंसेस अपनी अपनी है। लेकिन हम जब अपने विचारों में समाधान लाते हैं तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को सहयोग दे रहे हैं, उसके प्रति एक अनुकूल वातावरण उनको दे रहे हैं जहां वो उनको समाधान करना और सहज होगा। लेकिन हमारी भावनाओं में अभी नकारात्मकता है तो वो तो परिवर्तन होना ही नहीं है, तो उनको हमें समय देना होगा, वो अपने आप होगा, लेकिन हम उसको चेक नहीं करते रहे बार बार किया नहीं किया, उसने अपने मेरे लिए चेंज किया या नहीं, उसने मेरे प्रति व्यवहार चेंज किया या नहीं, बोल चेंज किया नहीं, वो काउंट करते रहेंगे तो समाधान नहीं होगा, फिर मेहनत महसूस होगी। चौथी बात, वी नो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन व्हेन सॉल्यूशंस आर सर्चिंग फॉर अस, अर्थात समाधान स्वरूप जब हम बनते जाएंगे धीरे धीरे, एक एक संबंध में या स्वयं के अंतर में भी समाधान लाते लाते समाधान स्वरूप हम बन जाएंगे, जो अपने आप हमको महसूस होगा कि जैसे समाधान हमारे सामने अपने आप आ रहे, हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली जो भी परिस्थिति सामने होगी या जो भी कॉन्फ्लिक्ट सामने आएगा उसमें तुरंत हम समाधान देख सकेंगे, दिखाई वही देगा क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ही अभी उसको ढूंढ रहा है। जैसे कई लोग हैं जो हम देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति है लेकिन उसमें वो परिस्थिति में वो हमेशा उसमें समस्या ढूंढते कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने ऐसा क्यों किया। देर आर पीपल हु ऑलवेज लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन सॉल्यूशंस एंड देर आर पीपल हु ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस इन प्रॉब्लम्स। उनका दृष्टिकोण ऐसा हो जाता है सकारात्मक, जो कितना भी प्रॉब्लम है उसमें वो देखते हैं अच्छा अभी क्या करना है, इसको इस रूप से करना है। तो हमारा समाधान स्वरूप जब दृष्टिकोण हो जाएगा तो हम सिर्फ समाधान को ही देख सकेंगे, समस्या को समझेंगे जानेंगे लेकिन अपना समय उसमें उसको देखने या उसके बारे में सोचने में गवाएंगे नहीं, तुरंत हम समाधान की दिशा में चले जाएंगे। जैसे वो समाधान हमें ढूंढ रहे हैं वो समाधान हमारे पास सहज आ जाएंगे, हमें महसूस होगा। क्यों? क्योंकि हम समस्या को सोचने या उसके बारे में विचार करने या वर्णन करने में समय गवाएंगे नहीं, तुरंत समाधान दिखाई देगा, उसका चिंतन करके उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। One cannot reach the point with challenging a problem or a person in question, but challenging the self to bring out the best. हमें समाधान तब तक नहीं होगा मिल सकता है जब तक हम समस्या या व्यक्तियों को चुनौती देते रहेंगे, ये मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, ऐसा किया ही क्यों इसने, ये ऐसा है ही क्यों, ये सोच ही कैसे सकता है, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या इसने ऐसा क्यों किया, उसको चुनौती देते रहेंगे तब तक समाधान नहीं होगा। हमें अपने आप को चुनौती देना है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझकर अपनी विशेषताओं को संपूर्ण रूप से प्रयोग करना है, बेस्ट अपना देना है, तब वो समाधान की शुरुआत हो जाएगी, तब हमारे तरफ से वो पहल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने देखा कि कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक राइट और एक रॉन्ग के बीच में नहीं होता है। अगर एक रॉन्ग है और एक राइट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो समाधान हो ही जाएगा। वो रॉन्ग है लेकिन आप राइट है तो आप टॉलरेट कर ही लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन वहां भी रॉन्ग है यहां भी रॉन्ग है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन आप वहां के रॉन्ग को चैलेंज नहीं करेंगे, आप अपने अंतर में क्या अपनी वीकनेसेस है उसको चैलेंज करके अपनी विशेषताओं का संपूर्ण रूप से प्रयोग करने का लक्ष्य रखेंगे। तो अपनी बेस्ट इस परिस्थिति में मुझे अपना बेस्ट कैसे देना, अपनी अंतर की जो क्षमताएं हैं अपने स्वमान को संपूर्ण रूप से मुझे कैसे जागृत करना है, अपने गुणों को अपनी शक्तियों को प्रयोग कैसे करना है ये मौके में इस परिस्थिति में। तो अपने आप को मैं चुनौती दूंगी कि मुझे अपना बेस्ट कैसे करना है। सीइंग अ न्यू डायरेक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज नो फिक्सेशन ऑन वन परसीव्ड सिचुएशन एंड ओपननेस टू डिस्कवर पॉसिबिलिटीज। जैसे कहा कि एक ही मंजिल है तो अभी जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो नहीं वहां पहुंच रहा है, वहां ट्रैफिक है तो हमको दूसरा रास्ता चुनना होगा। लेकिन अगर हम एक ही चीज को पकड़ के रहेंगे, नहीं यही रूप से करना है, यही रूप से सोचना है, ऐसा ही होना चाहिए, तो समाधान नहीं होगा, फिक्सेशन नहीं होना चाहिए। लेट गो, नवीनता को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हों, नए विचार, नए तरीके, नई दिशा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हों। अ पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन इज अ पॉइंट विच इवन दो अ लॉट इज नॉट अप्रूव्ड आई एम नेवर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। समाधान के बाद भी हमें समझ होगी कि सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया। ऐसा नहीं समाधान हो गया माना हमको पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति ने गलत किया। हमें समझ है कि सामने वाले व्यक्ति की ये गलती है, मुझे मालूम है मेरी भी ये गलती है, लेकिन मैं सामने वाले व्यक्ति की उस गलती के प्रभाव में नहीं हूँ, उसका चिंतन नहीं कर रहा हूँ, बार बार उसको सोच नहीं रहा हूँ, उसको अपने अंदर समा नहीं रहा हूँ, उसके आधार से अपनी मनोवृत्ति को दूषित नहीं कर रहा हूँ। समझ है लेकिन मुझे अपनी शक्तियों के आधार से, अपने गुणों के आधार से ही कार्य करना है। समझ है, ऐसा नहीं है कि हमको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति गलत है, लेकिन हम समझते हुए भी उसके प्रभाव में नहीं चलना चाहते, उससे हम प्रभावित नहीं है। पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन इज अ पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, जहां अंतर में स्थिरता आ जाती, अंतर में हम अपने स्वयं में स्थिर हो जाते हैं, अंतर में स्वमान में हम स्थिर हो जाते हैं। जैसे कहा कि वो अंतर में जब स्वमान आ जाता है तब वो नकारात्मक परिस्थितियों में हम स्थिरता का महसूस करते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है जो हम सुनते हैं, एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये एक तूफान था और उस तूफान में कई प्रकार के जो जहाज हैं वो डूब जाते हैं। उस तूफान के बारे में पहले प्रिडिक्शन तो हो चुका था, लेकिन प्रिडिक्शन में उन्होंने जिस शिपिंग लेन को वहां प्रिडिक्ट किया कि वहां वो तूफान आएगा, उस स्थान पर तूफान नहीं आया, दूसरे स्थान पर तूफान का प्रभाव हुआ। तो वार्निंग मिली थी लेकिन जहां वो तूफान ने एक्चुअली प्रभाव डाला वहां वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए वहां के काफी जहाज डूब गए, लेकिन एक जहाज जो है वो बच गया। वो जहाज दूसरे जहाजों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, वो वास्तव में दूसरे जहाज जो डूब गए थे उनसे वास्तव में कम इक्विप्ड, कम शक्तिशाली था, उसमें साधन भी कम थे, लेकिन फिर भी वो बच गया। और उसका कारण, उसका जो चालक था, जो कैप्टन था, वो उसका मूल कारण था। तो जब वो बच गया, जहाज और सभी पैसेंजर्स भी बच गए, उसके बाद कैप्टन को पूछा गया कि आपने क्या किया, किस रूप से आपने अपने जहाज को बचाया। तो कैप्टन ने कहा, जब मैंने देखा कि चारों तरफ तूफान है, अब मुझे मालूम है कि मैं कुछ किसी भी रूप से तूफान से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, तब मैंने एक निर्णय लिया और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा कि अब ये जो जहाज का जो दिशा है उसको बदल दीजिए। वैसे जहाज को तूफान से दूर ले जाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अब आप बदल कर सीधा ही वो जहाज का जो की दिशा तूफान के आमने सामने कर लीजिए। तो एकदम तूफान के सामने उस जहाज की दिशा को करिए। अब ये जो कैप्टन है वो क्या कर रहा था, टेक्निकली क्या कर रहा था, क्योंकि ये जहाज बच गया, तूफान है, जहाज उससे दूर, वैसे जब बचना चाहते हैं तो दूर हटना होने का उसका अभ्यास करना होता है, उससे दूर जाना होता है, लेकिन चारों तरफ तूफान में वो फंस गए, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। तो कैप्टन ने कहा कि अब आप उस जहाज के जो दिशा है उसको उस तूफान के आमने सामने कर लीजिए ताकि वो फेस करे उस तूफान को। अब वो क्या कर रहा था कैप्टन, प्रैक्टिकली टेक्निकली क्या कर रहा था, क्योंकि ये तूफान में बच गया ये जहाज, फेसिंग द सिचुएशन. अच्छा, वो एक फिलोसॉफिकल लेवल पर है कि वो फेस कर रहा था, लेकिन टेक्निकली क्या हो रहा था? गोइंग इन टू द आई ऑफ द स्टॉर्म. हर तूफान के बीच में एक केंद्र बिंदु होता है. तूफान का जो केंद्र बिंदु होता है वहां हमेशा स्थिरता रहती है. ये एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है कि कभी भी जब तूफान है तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है ना, वहां स्थिरता होती है. तूफान में जितनी हलचल है वहां वो केंद्र बिंदु में हलचल नहीं रहती, वहां स्थिरता रहती है. अब ये जो कैप्टन है, बहुत साल पहले जब वो नेवी में पढ़ता था, ट्रेनिंग में था, तब उसने ये जानकारी प्राप्त की थी कि कोई भी तूफान जो है उसके बीच में जो स्थिरता का स्थान है, तो अगर कभी ऐसी समस्या हो कि आप तूफान से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आपको प्रयास करके अपने उस जहाज को उस तूफान के केंद्र बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक है. वहां पहुंच गया अगर तूफान तो बच जाएगा. तो उसको ये समझ थी, तब उसने उस समय उसका प्रयोग किया. लेकिन उस तूफान को केंद्र बिंदु तक पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि आपको एकदम आमने सामने आना पड़ता है तूफान की. तो थोड़ा मुश्किल का सामना करके जब वो केंद्र बिंदु तक वो जहाज पहुंच गया, उसके बाद वो बच गया. तो उसी रूप से हम देखते हैं पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन माना जहां स्थिरता है, और वो है हमारे अंदर, हमारे स्वयं के अंदर ये केंद्र बिंदु है. तो जब हम कुछ समय के लिए अपने अंदर में चले जाते हैं और अपने विचारों में वो सकारात्मकता लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हर प्रकार का समाधान सहज हो जाता है. इस केंद्र बिंदु को हम कैसे अनुभव करें, उसके बारे में हमारा सेकंड दूसरा सेशन जो है कल रहेगा.